सभी फ्रेश बैठे हैं, मुरली सुन के आनंद आया। आप सभी भट्टी में आए और ये सुंदर अवसर भी आ गया। महान आत्माओं का जीवन सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होता है। न केवल दादी जी की महानताओं को हम सब सुन रहे हैं, सुनेंगे आज, लेकिन हमारा लक्ष्य हो हम दादी के जीवन से कुछ अच्छी बातें सीख लें। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब से दादी जी मधुबन में आई तब से ही मैं भी हूँ, और किचन में होने के कारण बहुत समीपता रही। आज मैं थोड़ी थोड़ी वो प्रैक्टिकल बातें भी आपको कहूँगा। बड़ी बड़ी बातें तो सब सुनते हैं, थोड़ी प्रैक्टिकल और बहुत ही सुंदर बातें। हमें भोजन बनाना नहीं आता था, दादी कम से कम 5 बार किचन में आती थी, क्योंकि दादी का कमरा किचन के दरवाजे से नेक्स्ट डोर ही था। सिखाती थी, हम गलती करते थे, हमसे कुछ आता नहीं था, कभी कुछ जला दिया, कभी कुछ गिरा दिया। सीखा हमने दादी से छोटी आयु में कैसे दूसरों को प्यार से सिखाया जाता है बिना डांट डपट के। बहुत सुंदर सीख मिल गई। दादी जी को जैसा मैंने देखा, आज मैं वो वर्णन करता हूं। मैंने कुछ ऐसे मौके भी देखे, भगवान प्यार तो बहुत आत्माओं को करता है, लेकिन वो एक ऐसे महान आत्मा थी जिसे बाबा बहुत सम्मान की नजर से देखते थे, बहुत सम्मान। ये मैंने देखा, अव्यक्त बाबा में देखा, बाबा आके कैसे उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें अलग से भी सिखाई। एक सुंदर बात दादी जी कहती थी, पहले मैं वो सुनाता हूं आपको। बड़ा बनने के लिए, बड़ा बन जाने पर सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, समाना पड़ता है। हम ये बातें नहीं जानते थे, हमने सीखा और आप सब भी सीखेंगे। आप में से कई भाई बहनें अपने परिवार के बड़े हैं, हम ये नहीं कहेंगे हम बड़े हो गए तो हम क्यों सुने। सुनना पड़ता ही है, और जिससे महान बनना है उसे सुनने के लिए तैयार रहना ही चाहिए। सहन करना, बाबा के बहुत बच्चों में सहनशीलता आ गई है, पर सहन करने के बाद हम भारी ना हो जाएं, हमारे मुख से ये आवाज न निकले कि इस जीवन में बहुत सहन करना पड़ा है। सहन करना हमारे लिए सहज भाव से हो, हमारी नेचर हो। दादी जी में ये सब बहुत कुछ था। एक विशेष चीज मैं दादी से सीखता था जीवन में। दादी के पास सभी लोग आएंगे आते थे, अपनी बातें सुनाते थे। आज बाबा ने कहा गलतियां सुना दो, दादी को सुनाकर जाते थे, लेकिन दादी का चित्त इतना निर्मल था कि कुछ भी अंदर रहता नहीं था। वही व्यक्ति जब अगले दिन आएगा तो दादी उसे उस नजर से नहीं देखती थी जो वो कल सुना के गया है, सब साफ। क्योंकि उसको साफ करना है तो हमें भी तो साफ रहना होगा। बहुत सुंदर ये बात थी। कई लोगों के मन में दूसरे की बात रह जाती है और हम एक फाइनल धारणा बना लेते हैं, ये व्यक्ति तो है ही ऐसा। आप सबको मैं एक गुह्य राज बताता हूं, थोड़ा कम करेंगे भाई, जरा सा कम वॉल्यूम। एक गुह्य बात सुन लें आप, अगर हम किसी के लिए ये सोचते हैं ये तो है ही ऐसा, तो बाबा ने इसके लिए सावधान किया था, तुम महान आत्माएं हो, तुम उसके जीवन पर ठप्पा लगा देते हो और वो वैसा ही रह जाता है। हमें सावधान होना है। आपके घर में बच्चे हैं, आपके जीवन साथी हैं, ये तो है ही ऐसी, ये बदलेगी नहीं। अगर ये भावना बना ली तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। हर व्यक्ति प्रति पल बदल रहा है। बदल रहा है या नहीं? बदल रहा है। जब ड्रामा का हर सीन हर पल बदल रहा है तो मनुष्य भी हर पल बदल रहा है। हमारी शुभ भावनाएं, हमारी श्रेष्ठ वृत्तियां दूसरों को बदलने में मदद करती हैं। हम बहुत अच्छी तरह समझ लें, हम सभी साधारण नहीं हैं, बहुत महान हैं। हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं, हमारी दृष्टि, हमारी फीलिंग्स, हमारे एटीट्यूड्स दूसरों पर गहरा असर डालते हैं। चेक कर लें अपने को। दादी जी की एक बात और जो हम सबको सीखनी है और मूल्यों में आजकल बहुत आ रही है। दादी कहा करती थी, हम लोगों के साथ दादी की कुछ ऐसी मुलाकातें होती थी मास दो मास में एक बार, जब दादी जी सभी मधुबन निवासियों के साथ बैठती थी। थोड़े ही थे हम शुरू में, 25-30, फिर 50 हुए, बहुत दिन के बाद 100 हुए। तो हम दादी जी से उनके जीवन से संबंधित प्रश्न कर लिया करते थे। मैं ज्यादा करता था, जरा जानने के लिए कि दादी जी में क्या क्या महानताएं हैं। तो मैंने पूछा, दादी आपको नींद अच्छी आ जाती है? क्योंकि सारा दिन परिवार की, इतने सेंटर्स, उनकी कुछ बातें, निश्चित रूप से मनुष्य तो मनुष्य है ना, उसको कोई टेंशन हो सकती है, उसको कहीं भारीपन हो सकता है। तो बताती थी कि बस तकिए पर सिर रखा और मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब सो गई, और 4 बजे से पहले आप यहां खुल जाती थी। मुझे रात में कोई दिन की बातों का इफेक्ट नहीं होता था। हम सोचते थे, अब हम थोड़े बड़े हो गए थे, कि ये कितनी सुंदर स्थिति है कि उन्होंने अपने को कर्मों से उपराम बनाया हुआ है। सारे दिन के कार्य करते हुए उनके चित्त पर उसका असर नहीं रहता है, साथ-साथ डिलीट हो रहा है। हम पूछते थे, दादी ऐसे कैसे है? अब यह है काम की बात। दादी का उत्तर था, जो आप कल से सुनते आ रहे हैं ना, दादी निमित्त निर्माण और निर्मल थी, ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये उनकी केवल खुश करने वाली महिमा नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज। तो दादी का उत्तर होता था, जब हम पूछते थे कि आप ऐसी निश्चिंत, निसंकल्प, बोझ से मुक्त, तनाव से मुक्त कैसी रहती हो, तो कहा मुझे ये बहुत स्पष्ट फीलिंग है कि सब काम बाबा ऊपर बैठकर कर रहा है। हमें भी इस बात को अपने जीवन में धारण करने में समय लगा है, मैं आपको अपनी बात कह रहा हूं। और ये बात ऐसी नहीं कि हम एक बार सुन लें कि बाबा सब कुछ कर रहा है और धारण हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम, समय लगता है। हमारा मैंपन गहरी जड़े जमा चुका है हमारे अंदर, उसको निकाल कर बाबा सब कुछ कर रहा है ये भावना, ये धारणा, ये विश्वास पक्का कर देना, इस पर हम सभी पुरुषार्थ करेंगे। मैं इसके लिए अपने मन में एक विजन बनाया करता था उन दिनों कि एक बहुत अच्छा सेवा का महारथी बाबा के पास पहुंचता है ऊपर वतन में, और बाबा को जाकर सुनाता है कि बाबा मैंने 20 कॉन्फ्रेंस की हैं, मैंने 25 सेंटर खोले हैं, मैंने बहुतों से तन मन धन सफल करवाया है, मैंने लाखों को बाबा का संदेश दिया है, बाबा उसकी सब सर्विस रिपोर्ट सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और धीरे से लास्ट में कह देते हैं बच्चे ये सब तो मैं कर रहा था। है या नहीं ये सत्य? क्योंकि मुझे बचपन से ही मैंने रामायण पढ़ी और महाभारत मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। महाभारत के कुछ सीन ये स्पष्ट करते थे कि कैसे ईश्वरीय शक्तियां अपने उन बच्चों के साथ काम करती हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनकी राय पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने को उनके आगे अर्पित कर दिया है। अब तुम जो कहोगे वही हम करेंगे। मैं वो सुनाता हूं आपको, लेकिन इससे पहले बोझ मुक्त दादी कैसे रहती थी, हमने ये सुना, फिर बाबा की मुरलियों बहुत सुना, बहुत प्रैक्टिस की, और मैं आज आप सबको भी ये कहूंगा, आज से इस 32 से आप सभी एक विशेष चीज ले चलें, दादी के दिन की ये सुंदर सौगात आप सबके लिए। दादी कहती थी कि मैं तो शाम को रात को सोने से पहले 5 मिनट बाबा के रूम में होकर जाती हूं, और आज की सारी बातें, मन पर आया हुआ कोई भी बोझ बाबा को अर्पित कर देती हूं, तो मुझे ऐसा लगता है बाबा ने सब कुछ ले लिया है। एकदम मुझे लगता है कोई बात मन को भारी भी कर रही हो तो लाइट हो गए और सो गए। आप सभी भाई बहने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। मैं जरा खुले रूप से बोल देता हूं, कई आत्माओं को सिर पर बोझ लेने की आदत है। बोझ की बात होती नहीं, टेंशन की बात होती नहीं, लेकिन बोझ ले लेते हैं, फटाफट भारी हो जाते हैं, कदम भारी, बुद्धि भारी, हाथ पैर भारी, काम धीमा। माताओं में ये संस्कार ज्यादा होता है, होता है या नहीं? बुरा नहीं मानना, नहीं होता, जिनको नहीं होता वो बहुत बुद्धिमान है। मैंने बुद्धिमान शब्द कहा है इसका अर्थ नहीं जिनको होता है उनको बहुत कम बुद्धि है, बुद्धिमान तो वो भी हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को भारी बना देना। कला सीखेंगे सभी, सारे बोझ बाबा को अर्पित करें और इसके चमत्कार देखें, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। मैं एक अनुभव एक माता का कई जगह सुना चुका हूं और वो मुझे बहुत प्रिय लगता है कि माताओं की भावनाओं पर भगवान कैसे राजी होता है। वो अनुभव थोड़े में मैं फिर सुना देता हूं आपको। एक माता हमारे पास आई थी ऊपर ज्ञान सरोवर में सेवा में, तो बाबा की मुरली समर्पणता पे चली थी। मैंने शाम को इस पे क्लास कराया तो उसने कहा मुझे एक अनुभव सुनाना है अपना। बुलाया मैंने उसको, देखो अनुभव सुनो। और न केवल माताएं लेकिन सभी भाई भी इस अनुभव से सीख लें, ये अच्छा अनुभव है। माताओं की भावनाओं का ये प्रत्यक्ष फल है। उसने सुनाया, मेरी लड़की की शादी होनी थी, पति नहीं है, मेरे पास केवल 11,000 रुपए थे। आप जानते हैं आजकल 11,000 से क्या होता है। कहा मैं बाबा के कमरे में गई, मैंने अपना पर्स खोल दिया और बाबा को कहा बाबा इसमें 11,000 हैं, अब आप इसमें बैठ जाओ। देखो कोई माताएं दिल में बैठाती हैं बाबा को, और इसने बैठाया। माता इसीलिए शायद पर्स साथ में रखती हैं हमेशा। तो बाबा को कहा बाबा मेरे पर्स में बैठ जाओ, अब ये तुम्हारी लड़की है, ज्ञान में नहीं है, मुझे इसकी शादी करनी है और कोई नहीं है। 10-12 दिन में ही शादी होने वाली थी और चमत्कार हुआ। 20 ऐसे लोग आए शादी में जो वैसे तो हमारी गिलानी करते थे, ओम शांति में जाती है, सब कुछ गंवा दिया है। उन्होंने इतने दे दिए कि मेरे पास इकट्ठे हो गए 13,00,000। फिर तो सब काम इजी था। ये सत्य है, अगर हम बाबा में संपूर्ण भावना और विश्वास कर लें तो बाबा के लिए तो एक संकल्प करना है बस, कुछ भी असंभव नहीं उसके लिए। इसलिए एक सुंदर बाबा का महावाक्य आप अपने पास ले जाएं आज से, जो लिखना चाहते हैं लिख लें। मैं बहुत सुनाया है ये, क्योंकि मैंने इसको बहुत प्रयोग किया है जीवन में। हमारे पास और तो कुछ बोझ होता नहीं, लेकिन अब कार्य चलता है, किचन का लंबा चौड़ा आप जानते हैं, ऊपर नीचे होने की संभावना बहुत होती है, लेकिन बाबा की ये बातें सब कुछ ठीक कराती हैं। जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, कहीं ऐसी जगह लिख के रख लेना, रोज पढ़ लेना कुछ दिन। जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? बहुत गुड फीलिंग होने लगेगी। जिनको भगवान साथ दे रहा हो, जिनके बोझ उठाने के लिए उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी हो, वो बोझ की गठरियां लेकर क्यों चलें? उतार दो अभी। उतारेंगे? बोलो, हाथ उठा के उत्तर दो, अभी उतार दो। और इसको याद रखना। दूसरा महावाक्य याद दिला देता हूं, आप सब उसको अच्छी तरह जानते हैं लेकिन उसकी लास्ट लाइन को कभी कभी भूल जाते हैं। स्लोगन लिखे हुए हैं, जब भी मुश्किल आए दिल से कहना मेरे बाबा प्यारे बाबा आ जाओ मदद करो। लास्ट लाइन क्या है आगे वाले सुना है जिसको याद हो। وہی اصلی چیز ہے. باپ بھی بندھا ہوا ہے مدد کرنے کے لیے, اس کو نوٹ کر لو اچھی طرح. بھگوان بندھا ہوا ہے مدد کرنے کے لیے, جن کو بھگوان مدد کر رہا ہے وہ ادھر ادھر کیوں دیکھیں, اپنے سے بات کر کے سبھی اپنے کو ٹرینڈ کر دو. میں نے بھی کیا ہے, کم سے کم 25-30 سال سے بابا کے مہاواک آنے لگے تھے, باپ کو بلاؤ بابا آئے گا, بھگوان کے بچے بلائیں اور باپ نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا. میرے لیے بہت سندر بات تھی اور میں بابا کا آہوان کرتا تھا بہت, اور مدد تو ونڈرفل اور چمتکارک ہوتی تھی. کلاس کرانی ہے مجھے, سر درد ہو رہا ہے پیٹ کے کارن, میں بابا کو بلاتا تھا اور کہتا تھا بابا اب ذرا کلاس کرانی ہے, بہت بھائی بہنیں سامنے ہیں, سر درد میں تو کلاس اچھی نہیں ہوگی, ذرا لے جاؤ اسے. اور دیکھتے دیکھتے ہی میں بھول ہی جاتا تھا کہ مجھے سر درد بھی ہے کیا. یہ بہت اچھے انوبھو ہوتے تھے. سب بوجھ بابا کو دے دو. ایک اور اچھی بات, میں واٹس ایپ آدی کا پریوگ کم کرتا ہوں, حالانکہ میرے پاس ہے, میں بھیجنے میں زیادہ پریوگ کرتا ہوں بابا کی سیواؤں کے لیے. ایک دن ایئرپورٹ پہ ہمیں ٹائم ملتا ہے, کبھی کبھی 2-3 گھنٹے پلین میں دیری ہوتی ہے, وہاں بیٹھ کے ہم یہ سب کام کر لیتے ہیں. تو میں نے دیکھا کسی نے بھیجا تھا, ایک ویکتی سویرے دیر سے اٹھا, جلدی جلدی تیار ہوا, اپنا ایکٹیوے کو چابی لگائی تو ایکٹیوا چلے نہیں, بڑا پریشان ہوا, وہیں چھوڑا, جیسے تیسے آفس گیا, بھوجن لینے گیا تھا دیر سے اٹھا, ریسٹورینٹ میں بھوجن کھانے کے لیے گیا, تھوڑی دیر ہو گئی تھی تو وہاں بھوجن ہی نہیں تھا, ختم ہو گیا تھا, اور دکھی ہوا. شام کو پریشان ہو کر گھر آیا, کسی کا فون آنے لگا تو فون ڈیڈ. اب پہنچا بھگوان کے پاس, یہ تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ آج, میں نے کیا تمہارا بگاڑا ہے, جیسے بھکت لوگ کہتے ہیں. پربھو جی مسکرائے اور کہنے لگے, جب تم ایکٹیوا چالو کر رہے تھے تم 5 منٹ ہی چلتے, یمدوت تمہاری انتظار کر رہے تھے. سمجھ گئے نا, ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, میں نے تمہارا ایکٹیوا خراب کر دیا تھا. جب تم ریسٹورینٹ میں بھوجن کرنے گئے تھے, بھوجن سے آپ کو فوڈ پوائزن ہونے والا تھا, میں نے پہلے ہی ختم کرا دیا تھا. جب تم واپس آئے اور فون کر رہے تھے, وہ فراڈ ویکتی کا فون تھا تمہارا, آج بینک اکاؤنٹ خالی کر دیتا وہ, اس لیے میں فون ڈیڈ کرا دیا. اب اس کی سمجھ میں آ گیا, بھگوان سے معافی مانگنے لگا, میں آپ کو سمجھا نہیں تھا. اب پربھو جی نے اتر دیا, یہ اتر ہم سب کے لیے ہے, اپنے جیون کی پلاننگ مجھے ہی کرنے دو. سوچ لیں سبھی, اگر ہم اپنے جیون کو اس کے ہاتھوں میں دے دیں تو وہ سندر پلاننگ کرے گا. ہم بہت پریشان ہوتے ہیں, مجھے یہ کرنا, بچوں کے لیے یہ کرنا, پریوار کے لیے کرنا, بیماری ہو گئی یہ کرنا ہے, پیسہ نہیں ہے, کیا کروں کیا کروں. گفٹ لے جاؤ آج کے سندر دیوس کی, حوالے کر دو اپنے کو بابا کے, وہ پلاننگ کرے گا, بوجھ ہرے گا, مدد کرے گا. پسند ہے؟ میں ایک چیز سب کو سکھاتا آیا ہوں, میرے کو اس کے بہت سندر انوبھو ہیں جیون کے. میرے ساتھ سب کچھ بہت اچھا ہوگا. 7 دن تک سویرے اٹھ کر یہ سنکلپ اپنے انتر من میں پوری طرح بھر دو. پھر بھی بیچ بیچ میں یاد کرنا تاکہ یہ نیچرل سنکلپ ہو جائے, ایک وچار دھارا میں بدل جائے یہ سنکلپ, میرے ساتھ سب کچھ بہت اچھا ہوگا. اور اس کا جادو دیکھنا, من میں جو الجھن ہوتی ہے کیا ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے, ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا, ویسا ہو گیا تو کیا ہوگا. ایک ہی سنکلپ سے سارے سنکلپوں کو کاٹ دینا, میرے ساتھ سب کچھ بولو بہت. سبھی کو یہ بہت اچھی طرح پتا ہو, پھر میں دادی پر آتا ہوں. اس کے بعد ہمارے سنکلپ ہی ہمارے بھاگیہ کا نرمان کر رہے ہیں. وشیش کر اب بہت پہلے جب ہمیں سنکلپ شکتی کا گیان نہیں تھا, بابا کی ایک لائن آئی مرلی میں, میں نے وہ نوٹ کر لی, حالانکہ اس کا راج پورا سمجھ میں نہیں آیا تھا پر سمجھ میں آ گیا بعد میں. سنکلپوں کی انرجی ہی بھاگیہ کی انرجی ہے, بڑا گوئی ایک چھوٹی سی لائن تھی. ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے ہمارے ہر سنکلپ سے وائبریشنز تو پھیلتے ہی ہیں, انرجی بھی پھیلتی ہے, بہت پاور پھیلتی ہے, اور وہ پرکرتی میں جا کر دونوں کے بیچ میں ریئیکشن ہوتا ہے, پرتیکریا ہوتی ہے, اور وہی چیزیں کئی گنا ہو کر ہمارے پاس واپس آ جاتی ہیں. میں ایک سندر سا ادھارن دینا چاہتا ہوں جس کا مجھے ابھی ابھی پتا چلا. ایک ہفتہ پہلے ہی ہم نے یہاں راجستھان میں پاس میں ایک سینٹر ہے وہاں گئے تھے. ایک بہن میرے پاس آئی سینٹر کی, گھر میں رہنے والی, کہا میں نے آپ کو دو سال پہلے فون کیا تھا, مجھے تو یاد نہیں رہتے بھائی, کیا ہوگا بولو کیا. کہا میں نے پوچھا تھا میرے اوپر 50 لاکھ کا قرض ہو گیا ہے, میں اسے کیسے اتاروں. اب دیکھیے 50 لاکھ کا قرض کوئی بہت بڑا کاروبار نہیں. میں نے اسے پوچھا ہوگا, اب اس نے بتایا, میں نے کہا پتی, کہا وہ تو ویسنی ہو گیا ہے, سونار کا کام تھا سب ٹھپ ہو گیا, قرض ہی بڑھتا گیا, وہ تو بالکل کام نہیں کرتا ہے. تو میں جو کچھ سکھاتا ہوں وہ میں نے اس کو سکھایا, وہ آپ بھی سن لیں, سبھی اچھی طرح سما لینا اس کو. مجھے بہت خوشی ہوئی اس کی یہ بات سن کر. کہا کہ 2 سال میں میرا قرض پورا اتر گیا ہے. میں نے کہا واہ, پربھو جی تم پر مہربان ہیں. اپنے پتی کو بھی لائی تھی, ایک لڑکی تھی اس کو بھی لائی تھی ملانے کے لیے, لڑکی تو بہت اچھی, پتی افیم کھانے لگا ہے. میں نے اس سے بات کی, اس کو سمجھایا وہ کیا سنکلپ تھے. سویرے اٹھتے ہی پہلے 3 منٹ میں ہی, 5 منٹ میں جد شروع میں سنکلپ کرنا, میں بہت بھاگیوان ہوں, کھلے دل سے, ادھورے من سے نہیں. یہ وشواس, یہ بھاونا کہ میرے جیسا بھاگیوان کوئی نہیں جسے سوئم بھگوان ملے ہیں. دوسرا سنکلپ, میں بہت سکھی ہوں. لکھ لیں آپ روز سویرے کیا کریں, آپ کے جیون میں چمتکاری موڈ لائیں گے یہ چھوٹے سے سنکلپ. میں بہت بھاگیوان ہوں, میں بہت سکھی ہوں, میں بہت دھنوان ہوں. سنکلپ کو کرنے میں تھوڑا مشکل لگتا ہے, بیچاری کو 50 لاکھ خرچ ہے, وہ کیسے سوچے گی میں دھنوان ہوں. میں نے اسے سمجھا دیا, تمہارے پاس پیسہ ہی تو نہیں ہے, लेकिन ज्ञान का खजाना, शांति का खजाना, खुशी का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों और गुणों का खजाना, ये सबसे बड़े खजाने तुम्हारे पास हैं। इसलिए खुले मन से संकल्प करना, मैं बहुत धनवान हूं। और चौथा संकल्प करना इम्पोर्टेंट, मैं कर्ज मुक्त हूं, मैं कर्ज से मुक्त हूं। इसी क्रम से करना पांच बार। एक बार एनर्जी पैदा हो जाए, ये चारों ओर फैलेगी और यही चीजें काम करेंगी। इन संकल्पों के जादू हुए हैं। ये केस तो मैंने अब का सुना है क्योंकि मुझे भूल जाते हैं अभी बहुत। रोज सभी अच्छे अच्छे अनुभव सुनाते हैं, माताएं भी सुनाती हैं, भाई भी। अब मैं तो, मुझे एक ही संकल्प रहता है, जिसने किया उसको अर्पित। मैं थोड़ा ही कुछ किया, मैं तो केवल तुम्हें राय दी थी, तुमने सच्चे मन से किया, बाबा ने तुमको मदद की, तुम मुक्त हुए, यही सबसे अच्छी बात है। एक संकल्प और सुना देना चाहता हूं। बहुत सारी माताएं मेरे पास आई हैं इस समस्या को लेकर। साथियों का बंधन होता है, किसी को पति का, किसी को ससुर का, सास का, किसी को और का। बहुत गुड इफेक्ट है। तीन संकल्प लिख लेंगी बहने, विशेष लिख लें, टीचर बहने जो बैठी है अंडरलाइन करके लिख लें और सबको सिखाएंगे। सवेरे उठते वही पहले पांच मिनट में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, पहला संकल्प। दूसरा, मैं बंधन मुक्त हूं। तीसरा संकल्प, ये सभी आत्माएं जो बंधन डालती हैं उनको आत्मा देखना है, ये सभी आत्माएं मेरी पूरी सहयोगी हैं। वही पांच बार इसी क्रम से। बहुतों के बंधन छूटे, पति सहयोगी बना, पत्नी सहयोगी बनी, क्योंकि सहयोग की बहुत जरूरत है। दादी जी, लास्ट में एक बहुत प्रैक्टिकल अनुभव सुनाना चाहता हूं। आखिरी साल था, 2007 थी। दादी ने बोलना बंद कर दिया था, आंखें बंद कर ली थी, आंखें भी बंद, बोलना भी बंद। पीछे अव्यक्त बाबा ने बताया था कि दादी को धुन लग गई थी कर्मातीत होने की। सब बड़े बड़े भाई बहने, दादियां, साथ में रहने वाले जोर से आवाज देते थे कान में, दादी जी ओम शांति, ओम शांति बोलो। दादी चुप। मैं कहीं से आया, यज्ञ के लिए देती हैं बहने भाई सब, वो यज्ञ दादी को देना था। मुन्नी बहन ने कहा अभी दादी चेयर पे बाहर आएगी, बोलती तो नहीं है भाई, आप दादी का हाथ लगवा देना, हम भेज देंगे। दादी आई व्हील चेयर पर अपने कमरे से बाहर, पैसेज जो है वरांडा जहां सब बैठते हैं। मैंने कहा दादी जी ओम शांति। क्या हुआ होगा? दादी ने आंख खोली, ओम शांति, कहां गए थे? मैंने बताया, अब मुझे याद नहीं मैं कहां गया था। मैंने कहा दादी इस जगह गया था, सबने आपको स्वास्थ्य की शुभकामनाएं भी भेजी हैं, याद प्यार दिया है और ये सब दिया है, आप स्वीकार करो। दादी ने हाथ लगाया और मेरे को कहा सब कुछ ठीक है, किचन अच्छा चल रहा है। मैंने कहा हाँ दादी, और फिर से आंखें बंद। अब वहां देखने वाले पांच सात थे, ये बात फैल गई फटाफट चारों ओर कि दादी ने केवल सूरज भाई से बात की, सब बड़े बड़े आए, आंखें बंद रखती और फिर आंखें बंद कर ली हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट को बुलाया था दादी के लिए कि भाई क्या है, दादी ने आंखें बंद कर ली है, बोलती नहीं है। कहा नहीं, डॉक्टरों ने बड़े बड़े डॉक्टर आए, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आए, कहा दादी तो बिल्कुल ठीक है, अंदर में दादी के चारों ओर जो हो रहा है दादी उसे देखना नहीं चाहती, इसलिए आंखें बंद कर ली हैं। ये उनका परफेक्ट डिटैचमेंट का एक स्वरूप था, संपूर्ण रूप से डिटैच्ड, कर्मातीत अवस्था की ओर। उन्हें आभास तो हो ही गया था मेरा जाने का समय है, निरंतर योगयुक्त। मैं दादी के पास जब से शांतिवन बना था, बल्कि पांडव वन में दादी ने मेरे लिए एक बात रख दी थी कि मैं मुरली सुना के आऊं तो तुम तभी आके मिल लेना, पीछे सब लोग आ जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो सबसे पहले दादी से मैं रोज मिल लेता था, जो भी कामकाज है, पूछना है, बताना है, तो मैं दादी के पास जाता था। यहां दादी कॉटेज में मैं दादी को ध्यान से देखता था, चेहरे पे तो सब कुछ होता है ना, दादी की गर्दन ऊपर, आंखें बंद, ऊपर टिका दिया है अपने को, स्थिर कर दिया था श्री बाबा पर। इस बात को सब तो नहीं जान पाते, चेहरे पर वो योग के चिन्ह, आत्मसंतुष्टि के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते थे। कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। बाबा ने कह दिया था जो इष्ट हैं उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, ये राज है बहुत सुंदर। और मैं आप सबको भी कहूंगा, जो आत्मा अशरीरी होने का बहुत अच्छा अभ्यास करती हैं, उन्हें शारीरिक बीमारियां पीड़ा नहीं देती, अनुभव करेंगे सभी। मैं आने वाले समय के लिए भी सबको कुछ कहना चाहता हूं। दादी के लिए एक बात और, आपने सुन लिया, दादी बहुत निर्मल थे, सभी के लिए शुभ भावनाएं। शुरू से हम देखते आते थे, लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आते थे, कुछ कठिनाइयां भी पैदा करते थे, लेकिन कैसे वो सबको संतुष्ट करती थी। और जो मैंने एक चीज बताई, सबके लिए प्रेम और शुभ भावनाओं का संस्कार, सभी को संतुष्ट करने का संस्कार था। बस हम 10 मिनट और बैठेंगे, इसलिए आप सोच रहे होंगे किसी को भूख भी लगी होगी। सबको संतुष्ट, जब हम लोगों की क्लास होती थी मधुबन वालों की, मान लो 50 लोग बैठे हैं, दादी ये पूछती थी खुले दिल से, दादी से सब संतुष्ट हो, दादी को, दादी ने किसी को कुछ कह दिया हो भाई कभी तो मैं बहुत क्षमा याचना करती हूं, दादी के मन में किसी के लिए कोई भावना नहीं है, दादी को इच्छा रहती है मेरे परिवार में सब सुखी रहें, संतुष्ट रहें। बहुत ही बहुत प्रैक्टिकल, महानताओं से भरी बात, सबको संतुष्ट करने का संकल्प। कोई बीमार हो गया तो बार बार पूछती थी, जो निमित डॉक्टर थे बनारसी भाई होते थे, भाई उसकी केयर हो रही है, उसको फल पूछ पहुंच रहे हैं, उसको जहां दिखाना दिखा रहे हो, तब संतुष्ट होती थी। तो एक बहुत विशाल दिल, दादी कहा करती थी, मैं केवल ब्रह्मा कुमारी संस्था की चीफ नहीं हूं, मैं इस बड़े ईश्वरीय परिवार की बड़ी हूं। इसलिए जब टीचर बहने, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये, जब टीचर बहने समर्पित होती थी, छोटी कन्याएं, अब देखो कोई 20 साल की है, कोई 22 साल की है, कोई 25 साल की है, घर छोड़कर बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गई, ये उनका बहुत बड़ा त्याग होता है, बलिदान होता है, संसार की सभी मिठाओं को छोड़कर सफेद वस्त्र धारण कर लेना, एक सा भोजन खाना, अपने भोजन की रुचि को समाप्त कर देना, ये इन बहनों का छोटा त्याग नहीं होता। दादी क्या कहा करती थी, हृदय को छूने वाली बात होती थी। जब ये बहनें दादी से विदाई लेती थी तो कहती थी उन्हें, कुछ भी जीवन में बात आ जाए ना परेशानी की, दादी के पास चले आना, दादी तुम्हारी है। दिल छू लेती थी सबका। इसलिए जैसे बाबा को सब कहते मेरा बाबा, दादी को भी सब कहते थे दादी हमारी है, सबकी सुनती थी, आर्थिक मदद भी करती थी। दादी ने शुरू किया था बहुत पहले से, ठंडी होती थी आबू में बहुत, सभी नौकरों को कंबल दो। जब यज्ञ इतना संपन्न नहीं था तब से ये सबको कंबल बांटो, हर साल वो प्रथा चालू हो गई। पीछे प्रथा शुरू हुई, आबू वालों को सबको भोजन कराओ, यहाँ आ गए यहाँ के आदिवासी जो गांव हैं सबको भोजन कराओ, ये जो जगह थी ये सब भोजनालय बन जाते थे, यहाँ भोजन खिलाया जाता था। ये बहुत बड़ा दिल राजाई संस्कार दादी के अंदर थे। और दादी एक बात कहती थी, आप सभी ध्यान से सुन लें, ये उनकी बहुत सुंदर सीख सबके लिए है, नोट कर लें जो नोट कर रहे हैं। जितना बड़ा दिल रखेंगे उतना ही ज्यादा आएगा धन। जिनका छोटा दिल होता है उनको कम आता है, देने वालों को कभी कमी नहीं होती। जो देते हैं उनके भंडार भरपूर होते हैं। दादी देती थी बहुत। इसलिए ऐसी महान आत्माएं हमारे इस महान यज्ञ की चीफ रही और लंबा समय रही। हम तो उनके साथ रहे, किचन में आती थी, जब किचन दूर हो गया, पांडवन में भी दूर हो गया थोड़ा, उतराई थी थोड़ा, रोज नहीं आ पाती थी, सेवा बढ़ जाती थी, दो तीन दिन के बाद आती थी, सब कुछ पूछती थी। एक सुंदर बात, दादी का आना माना चारों ओर खुशी की लहर फैल जाना। ये नहीं कि दादी आई है तो डर गए लोग, डर नहीं, खुशी की लहर फैल जाना, एनर्जेटिकली हो जाना सबको, ये बहुत बड़ी विशेषता होती है किसी बड़े की। किसी बहुत बड़े चिंतक ने कहा है, जब तुम बड़े बन जाओ तो ऐसे भी रहो सब तुमसे सहज मिल सकें, ऐसे ऑफिशियल ना हो जाओ कि कोई तुम्हें मिल ही ना सके, ऐसे कपड़े ना पहन लो कि साधारण लोग समझे हम तो बड़े गरीब हैं भाई, इनसे कैसे मिलेंगे। ऐसी मिलनसार थी दादी जी। तो आप सभी यहां आए हैं, किसी ने सोचा नहीं था इतनी बड़ी संख्या में आप सभी आएंगे, सेवाधारी भी नहीं थे, आप सब बहुत मदद कर रहे हैं किचन में भी और सब सेवाओं में भी। मैं अपनी ओर से भी आपको बहुत शुक्रिया करता हूं, क्योंकि मैं इन दिनों नीचे आता नहीं हूं, 5-7 हजार के ग्रुप होते हैं, हमारे किचन वाले सब काम पूरा कर लेते हैं, लेकिन मुझे बताया 16 हजार हो रहे हैं और सेवाधारी नहीं है। मैं किचन में आया तो 2 भाई थे केवल, वो भी बूढ़े, तो मैंने सोचा अब ये बेचारे जो यहाँ वाले इनका तो कंधे आज ही बेकार हो जाएंगे पूरे। तो मैंने बाबा का आह्वान किया और आप सब भी किया करें, पहले अभ्यास किया, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, बहुत अच्छा किचन में बैठकर इससे अट्रैक्शन होता है आने वालों को। फिर बाबा को मैंने कहा कि बाबा आप 1000 भुजाओं सहित अब किचन में आ जाओ, ये तो भोलेनाथ का भंडारा आपका ही है, ये मेरा तेरा तो किसी का है नहीं, अभी ये काम संपन्न करना है, भाई बहने आए हैं, किसी को कोई कमी ना हो। और फिर मैंने यहाँ मनोरमा बहन को फोन किया, फिर आप सब आने लगे फटाफट, सब कार्य बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, बाबा के कार्यों में ऐसे ही सहयोगी बनते रहना। ये सहयोग भगवान को बांध लेता है, छोटी बात नहीं कह रहा हूं, मेरे अपने अनुभव हैं। मैं बीमार भी होता था, आबू में पेट दर्द बहुत होते थे, कच्चा पानी हम सब पीते थे, पेट की बीमारियां सबको लग गई थी। दादी कहती थी ये काम करना है, मैंने अपने जीवन का सिद्धांत बनाया था, हाँ, और इफेक्ट ये होता था कि वो सेवा की और तबीयत ठीक हो गई। तो मैं तो सोचता था सदैव कि मेरी तो दवाई है यज्ञ सेवा। आप भी ध्यान रखेंगे इस बात का। मैंने कई डिप्रेशन के केस युवकों के एक दो साल में ऐसे देखे। मैं सुना देता हूं, एक डॉक्टर बहन पिछले साल अपने एक बच्चे को लेकर आई, 11वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, कहा इसको डिप्रेशन हो गया है और इसका एक साल हमें ड्रॉप करना पड़ा है। मैं खुद डॉक्टर हूं लेकिन डॉक्टर इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैंने उस लड़के के से पूछा हमारे पास काम करोगे, कहा बिल्कुल करूंगा। मैंने उसकी माता को कहा इसको 15 दिन हमारे पास छोड़ जाओ, उसने कहा बिल्कुल रख लो, इसका एक साल तो अब जा रहा है। मैंने उसकी ड्यूटी लगवा दी सब्जी डिपार्टमेंट में, जहां सब्जी आती है, धोते हैं, काटते हैं, और उसको कह दिया तुम अधिक से अधिक काम कर लो इस सब्जी डिपार्टमेंट में, ट्रक आता है सब्जी का, उतरवाओ, सब्जी सेट कराओ, सब्जी धुलवाओ, कटवाओ, टोकरे उठाओ। शाम को वो मुझे मिल गया रास्ते में। मैंने पूछा क्या हाल है तुम्हारा, ये प्रभु कृपा थी उस पर, कहा मेरा डिप्रेशन तो ठीक हो गया भाई जी, क्योंकि डिप्रेशन वाली की फीलिंग ही अलग होती है। अब उसके जीवन में खुशी लौट आई, ये उस सेवा के आधे दिन की सेवा का पुण्य का प्रभाव। और जब हम काम करते हैं ना तो हमारी नसें, हमारा ब्रेन सब एनर्जेटिक हो जाता है। इसलिए सभी सेवा पर ध्यान दें। लास्ट बात कह देता हूं आपको जो बहुत गहरी है और बहुत सुंदर है। हमारे संकल्पों का प्रभाव, हमारे इस ब्रेन में और शरीर में जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उन पर पड़ता है। अब वैज्ञानिक तो कहते हैं 1 खरब कोशिकाएं ब्रेन में ही हैं, इनको उनकी भाषा में न्यूरॉन्स कहते हैं। बस इतना आप जान लें, अगर मन में नेगेटिव विचार हैं, अगर व्यर्थ विचार हैं, अगर उदासी के विचार हैं, निराशा के विचार हैं, तो ये न्यूरॉन्स, ये कोशिकाएं मरने लगती हैं, एक साथ लाखों करोड़ों मर जाती हैं। जिसकी बहुत मर जाती हैं उसको डिप्रेशन, मानसिक रोग होने लगते हैं। खुशी के संकल्प करेंगे, नशे के संकल्प करेंगे, उठते ही डांस कर लिया करो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। गीत बहुत अच्छे अच्छे बने हैं आजकल, तो एयरफोन है, कान में लगा के सुन लो, ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन ना छूटेगा। जब से तेरा प्यार मिला दिल रहता है खिला खिला, सुन लो सवेरे। जितने खुशी के संकल्प होंगे ये मरे हुए न्यूरॉन्स सेल्स फिर से जीवित हो जाएंगे, शरीर की बीमारियां ठीक होंगी, भाग्य बदलेगा। अपने बच्चों को भी सिखा देना, अपने घरों में खुशी का माहौल पैदा करें, सभी माताएं विशेष रूप से, बातों को ज्यादा तूल नहीं देंगे, बातों का महत्व नहीं, महत्व हमारी स्थिति का है। अपनी स्थिति को सुंदर बनाएंगे, खुशी में डांस करते रहें आप, तो आज की गिफ्ट फिर से याद दिला दूं, दादी डे पर सारे बोझ, हम बोझ उठाने के लिए थोड़ा ही हैं, ऊपर भेजा करो, किक करो, जाओ ऊपर, सब परम धाम में समा जाएंगे जाके। ओम शांति। अभी तीन मिनट योग में बैठ के ही उठेंगे, माताओं तीन मिनट और योग कर लो, गीत बजाओ भाई, और सारे बोझ जो मन पर हो भी कोई भूले भटके सब ऊपर भेज दो।
अब मुझे